11486 पेज 88 अर्थात अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज मध्य में बोला था भगवान भी मेहमान के भी मेहमान बन करके आए। भगवान मेहमान बन करके आवे वो कितने भाग्यशाली है। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। जो मेहमान बन करके आने वाला है उसका रथ बनता है, और फिर मेहमाननेबाजी का भी निमित्त बनता है, तो यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, ये भी विशेष पार्ट है। इतनी शक्तियों को और कितना समय शक्तियां कितनी? 8 शक्तियां बस। 8 तो मुख्य चुनी चुनी शक्तियां हैं। अष्ट शक्तियों का, अष्ट देवियों का, क्योंकि शक्तियां हैं ना, पूजन होता है तो वो तो चुनी हुई चुनिंदा है। नव दुर्गा के रूप में गाई जाती हैं शक्तियां। आत्मा की विशेष शक्तियां हैं, लेकिन नंबरवार और भी तो हैं। कुल टोटल शक्तियां कितनी हैं? जो शक्ति स्वरूप धारण करती है, शिव है तो शिव की शक्तियां भी हैं, क्योंकि बेहद का परिवार है। कोई हद का परिवार, हद का कुटुंब तो है नहीं। तो इतनी शक्तियों को माना, कितनी शक्तियों को कुल टोटल शक्तियां कितनी हैं? हाँ, जो जो पवित्रता का विरुद्ध धारण करती है वो ही शिव की शक्ति है। तो पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले कुल कितने ब्राह्मण निकलते हैं? बाकी तो प्रजावर्ग की लिस्ट में है। 9 लाख या सत्यु के अंत तक के भी 2 करोड़, लेकिन वो तो बाप की प्रजा ही नहीं है। बाप की प्रजा कितने बनते हैं? सिर्फ है? सिर्फ 9 लाख। तो 9 लाख जो प्रजा है, 9 लाख सितारे आत्म की स्टेज में रहने वाले, उसमें से भी जो विशेष शक्तियां हैं माना अधिकारी है, राज्य को संचालन करने वाली शक्तियां हैं, जिन्हें कहते हैं शरीर की धमनियां, जिनमें खून बहता है। खून नहीं होगा तो शक्ति नहीं होगी। नसें, कितनी नसें नाड़ियां होती हैं शरीर में? 16,000। तो विराट पुरुष जो है उसकी भी 16,000 नसें नाड़ियां हैं। उनमें संकल्पों का खून बहता है। अगर वो खून न हो तो जैसे शक्ति शक्ति नहीं। तो इतनी शक्तियां हैं जिनको इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना। शिव की शक्तियां कितनी हैं? 16,000। तो 16,000 शक्तियों को धारण करने वाले सोल को धारण करना माना अपने शरीर में आवेश करके रखना। कितना समय? कितना समय आवेश करके रखता है? कब से कब तक? 5,000 वर्ष तक। 5,000 वर्ष में तो शिव आता ही नहीं, तो आता ही संगम युग में है। और संगम युग में आने पर भी कोई 16,000 पूरी शक्तियां एक साथ तो प्रत्यक्ष नहीं हो जाती, टाइम तो लगता है। लेकिन फिर भी कहा जाएगा आदि से लेकर के अंत तक। तो कितना समय, कब तक धारण करता? जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाती। और उन शक्तियों के थ्रू जिन्हें संहार कारणी कहा जाता है, इस पाप की दुनिया का आसुरी संसार का विनाश नहीं हो जाता, संहार नहीं हो जाता, तब तक मन 60-65 वर्ष लगते हैं कम से कम। इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना ये भी विशेष पार्ट। लेकिन इतनी शक्तियों को समाने की शक्ति का फल धारण तो किसने किया? एक ने। किसने धारण किया है? एक माना कौन? नहीं, रथ को भी मुबारक है जिस रथ ने इतने इतनी शक्तियों को इतने लंबे समय तक धारण किया। ऊपर आया ना, तो ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। आप सबको माना सर्व शक्तियों को, सब बच्चों को। तो समाने के शक्ति की विशेषता से, समाने की शक्ति की विशेषता और सामना करने की शक्ति की विशेषता सबसे जास्ती किसमें होती है? समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, ये दो विशेष शक्तियां किसमें विशेष बताई गई है? सागर में। ये सागर के विशेष गुण है। सागर ज्ञान लहरों से तूफानों का मुकाबला भी करता है, सामना भी करता है। और जो भी कूड़ा करकट पत्थर गंद वगैरह बहा करके नदियां लाती हैं, वो सब अपने अंदर समाये लेता है। तो ये समाने की शक्ति, 16,000 नसें नाड़ियां हैं तो गंदा खून भी आता होगा और स्वच्छ संकल्पों का भी खून उनके थ्रू आता होगा। तो सब प्रकार के संकल्पों के खून को अपने अंदर समा के रखना ये समाने की शक्ति की विशेषता से, बाप दादा की शक्तियों को समाना ये विशेष पार्ट कहो व गुण कहो,
तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न
निर्विघ्न रही। कौन कौन निर्विघ्न रही है? दोनों तरफ लागू होता है, हद में लागू होता है गुलजार दादी के ऊपर, और बेहद में लागू होता है जिसने समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति को धारण करने वाले सागर को धारण किया, माने जिसका आधार बनी। तो सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही, ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी मुबारक हो। पहले किसके लिए मुबारक हो बताया? रथ के लिए। और रथ को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तो संभालने वाला सभी सेवाधारियों के मुकाबले, तो ऊपर बोला रथ को भी मुबारक हो और रथ को संभालने के लिए जो आधार बने इसके लिए भी मुबारक हो। इसके लिए किसके किसको किस आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस किया है? वहां तो वहां की बात, और यहाँ एडवांस में भी उसके अर्थ लगते हैं। यहाँ एडवांस में रथ को संभालने वाला कौन है? इसके माने जो बाजू में बैठे है? तो इसके लिए भी मुबारक हो। क्यों मुबारक हो? क्या विशेषता बताई? सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही। विघ्न आए तो, लेकिन विघ्न को क्रॉस किया जाए। तो जो क्रॉस करने वाला है उसको निर्विघ्न ही कहेंगे। ऐसे नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, विघ्न आएंगे नहीं तो परीक्षा पास कैसे की जाएगी? तो विघ्न भी आए और उनको क्रॉस भी करे तो ये निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक। और पद्मा पदम थैंक्स, थोड़ी बहुत थैंक्स नहीं, पद्मा पदम थैंक्स, डबल विदेशियों को भी थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबनी की शोभा कितनी अच्छी कर दी। नहीं तो मधुबन में तो बहुत थोड़ी सी आत्माएं आती थी, वहां भी तो एडवांस में भी 69 से पहले कितने थे, जबकि लंदन में पहला सेवा केंद्र नहीं खुला था, विदेश में पहला सेवा केंद्र जब नहीं खुला था तो 69 18 जनवरी से पहले कितने थे? बहुत थोड़े थे। और उसके बाद जैसे ही विदेशियों का आना जाना शुरू हुआ तो मधुबनी की शोभा बढ़ गई। तो ऐसे एडवांस में भी पहले इतनी रिमझिम नहीं थी और बाद में शोभा बढ़ गई। तो डबल विदेशियों को भी मुबारक, डबल मुबारक दे रहे हैं। पुरुषार्थ की भी मुबारक और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक।
क्योंकि परिवार की शोभा बढ़ गई। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो। कौन? डबल विदेशी। इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहां भी हैं, माने दूर हैं भले, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही हुई है, समान और संपूर्णता की। किसके समान और संपूर्ण बनना? बाप समान और संपूर्ण बनने की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती है। बाप दादा दोनों का पार्ट क्या कहा? बाप और दादा दोनों का पार्ट साकार में बजाय रही है। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। किसको? हैं? दादियों को। सबने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, ऑलराउंड सब सेवाधारी। चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वो अभी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी जमा किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक मुबारक के योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर के सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं, उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है। संभालने वाले कौन है? दादियों की बात हो रही है ना, तो मधुबन में रहने वाली जो दादियां हैं वो संभाल करने वाली है, लेकिन संभाल करने की भी सेवा विशेष नहीं लेनी चाहिए। अपनी सुरक्षा, अपनी वस्तुओं की सुरक्षा स्वतः करनी चाहिए या किसी का आधार लेना जरूरी है? अगर सेवा लेते रहेंगे तो उसका भी हिसाब किताब बनता है। तो जो निमित्त है उन्हों को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए अपने अलबेलेपन से। किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रूमाल भी अगर खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। साड़ी की तो बात अलग, वो तो बड़ी चीज हो गई। क्या था? या तो रूमाल भी बेहद का तो साड़ी भी बेहद की। साड़ी कौन सी है? हैं? हाँ, ये सारा शरीर ही साड़ी है। तो रूमाल जो बनता है वो तो साड़ी का एक छोटे से अंग से रूमाल तैयार हो जाता है। तो वो भी अगर खो गया, मतलब ये है कि अपनी संभाल अपने आप करनी। शरीर की, शरीर के अंगों की, मन बुद्धि की, संभाल अपने आप करनी है,
क्योंकि बताया कि अगर रूमाल भी खो गया तो संस्कार तो खोने के पड़ गए ना। संगम युग में संभाल न करना, अलबेलापन लाना और कोई चीज खो जाए ये संस्कार डालना, तो अनेक जन्मों के संस्कार पड़ जाते हैं। और अलबेलापन तो दुख देता ही है, तो अनेक जन्म दुखी होते रहेंगे। इसलिए बताया कि ऐसा संस्कार नहीं पड़ना चाहिए कि जो ऐसा अंजाम हो कि रूमाल खो गया तो कभी खुद को भी खोना पड़े। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेज फुल। शरीर की भी नॉलेज तो आत्मा की भी नॉलेज है। शरीर की संभाल, अपने शरीर की संभाल हमें अपने आप कैसे करनी है, अपनी आत्मा मन मन बुद्धि की संभाल कैसे करनी है, संस्कारों की संभाल कैसे करनी है, अच्छे संस्कार अपने में कैसे समाने हैं, उनकी पालना कैसे करनी है, ये सब नॉलेज मिली हुई है। दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, मेरा शरीर किसी विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं, हमारी आत्मा तो शक्तिशाली है ही। शरीर भले कैसा भी हो वो तो ठीक है कि बाबा ने हमको इस बात की नॉलेज दे दी कि जब तक इस दुनिया का विनाश होगा तब तक प्रकृति के पांच तत्व तो तमो प्रधान होते चले जाएंगे, तो शरीर भी कैसा होता जाएगा, तमो प्रधान दुखदायी होता जाएगा, और बाप से योग लगाने के कारण आत्मा पावरफुल होती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर तमो प्रधान होता जाएगा तो हम इसको और तमो प्रधान बनने दें। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग नहीं लगेगा, क्योंकि विघ्न तो आया ना, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेज फुल में ये सब बातें हैं, सारी नॉलेज आ जाती है। अच्छा, तीसरा पीर, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजे सजाए देख रहे हैं। क्या कहा? सभी आत्माओं को क्यों कहा? जिनकी शादी होती है, जिन्हें समर्पण किया जाता है, दिया जाता है, उनको सजाया जाता है, है? यहाँ सभी की बात क्यों की? कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ, तो बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजे सजाए देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीय बनाए रहा है, एक को नहीं, लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। लाइट मन कौन सी लाइट है? हाँ, ज्ञान की लाइट भी तब होगी जबकि प्योरिटी की लाइट होगी। दोनों अरस परस हैं। मनन चिंतन बुद्धि में तब ही चलेगा जब चारों तरफ से बुद्धि योग हट जाएगा, एक में लगेगा। तो जितनी पवित्र आत्मा होती है उसमें उतना ही मनन चिंतन मंथन भी चल सकता है।
तो लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी संगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प देख करके खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। क्या था? समर्पित तो कुछ हुई लेकिन बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद किया है ना? बाप दादा ने तो पसंद कर लिया सभी को। आपने भी पक्का पसंद किया है ना? पक्का पूछा और ना भी लगा दिया। ये ना की खतरे की घंटी नहीं लगानी चाहिए। दृढ़ संकल्प का हथियार बन गया है। कच्चा संकल्प तो नहीं है। बाप दादा के पास हरेक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंच जाता है। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। ऐसा पक्का बंधन बांधा है कि संकल्प में भी कभी ढीलापन ना आवे। कितने जन्मों का वायदा किया है, किसके साथ ये पक्का बंधन बांधने का कितने जन्मों का वायदा किया है? अरे अरे गीत भी चल गया, अब तो याद हो गया होगा। जन्म जन्म का साथ है, वो तो भक्ति मार्ग वालों ने गाया। वो तो जानते ही नहीं कि 84 जन्म होते हैं। उन्होंने कह दिया 100-100 बार हमने जन्म लिए। वास्तव में लिए कितनी बार? 84 बार हमने जन्म लिए। तो कितने जन्मों का पक्का सौदा किया है? ये ब्रह्मा बाप के साथ है, सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है। क्या था? ब्रह्मा सिर्फ ब्रह्मा के साथ नहीं, ब्रह्मा बाप के साथ। माना ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल, और बाप माना है मनुष्य आत्माओं का पिता। तो प्रजापिता ब्रह्मा के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो बाप दादा की तरफ से तो गारंटी है। आपने भी गारंटी ले ली, और अगर गारंटी ले ली तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसका हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। किसका हिसाब कि कितनी खुशी आई है? अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना। इस चीज को धारण करने वाले रहना है ताजधारी। ताजधारी माना प्योरिटी के भी ताजधारी। पहली बात तो यही है, क्योंकि प्योरिटी के ऊपर सारा मदार है। प्योरिटी के ताज धारी, और फिर वो तो प्योरिटी का ताज तो सतयुग में होगा फर्स्ट जन्म में, और अभी यहाँ संगम में है ज्ञान का ताज में है जिम्मेवारी का ताज। इस यज्ञ की सुरक्षा की जो जितनी जिम्मेवारी उठाता है वो उतना ही बड़ा भविष्य में ताजधारी बनेगा। तो सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि हम कदम कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे, माना है? कदम कदम पर कदम रखने वाले का मतलब क्या हुआ है? कि जहाँ बाप का कदम रखा जाएगा उस बाप के कदम के ऊपर कदम रख देंगे है? बाप जहाँ पांव रखे उसी पांव के ऊपर हम पांव रख देंगे, न वो आगे बढ़े ना हम आगे बढ़े। कदम के ऊपर कदम रख करके चलने का मतलब यह है कि जहाँ बाप दादा की श्रीमत हो, जो बाप दादा की बुद्धि रूपी कदम हो, यानी बाप दादा जो संकल्प में चाहते हो, जो कदम उठाना चाहते हो, वही कदम बच्चे भी उठाएं। वो कदम इधर उधर हिलने वाला ना हो। अगर बाप दादा के संकल्प के आधार पर संकल्प को कैच करते हुए जीवन में चलते रहेंगे तो कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। वो तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती है, जब शादी होती है तो परंपरा होती है पांव के ऊपर पांव, स्थूल पांव के ऊपर पांव रख देते हैं। यहाँ स्थूलता की बात नहीं है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले हो। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प, माना मन मना भव। मन मना भव माना मेरे मन के संकल्पों में अपने मन के संकल्पों को समा दो। ये हो गया कदम के ऊपर कदम रखना। जो बाप की मत सो बच्चे की मत, और प्रैक्टिकल में उस मत पर चलना। ऐसा संकल्प किया है एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ भटकने वाला न हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना।
11486 का पद्धत लाए तीसरे फेज के मध्य में विदेशी भाई बहनों से, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए ऐसे बुद्धरूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता जाए, क्योंकि ये विमान सर्कमस्टांसेस के कारण नहीं भी उड़ सकता है, न भी मिले, लेकिन बुद्धरूपी विमान तो सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए, तो आप इस विमान के मालिक हो ना? कौन से विमान के? बुद्ध रूपी विमान के। सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली स्टेज में हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे।
किसके पास? किसके पास सेकंड में पहुंच जाएंगे? बाप दादा के पास। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचने वाला होता है उसका वो भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं है तो वो विमान भी नहीं चलता। कौन सा? स्थूल विमान। अच्छा, पहली पार्टी से सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा। राजा बनकर के कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्मेंद्रियों के वशीभूत चलने वाले। क्या कहा? कोई राजा हो और अपने मातहत अधिकारियों के अधीन होकर के चलता रहे तो वो राजा असली अर्थों में राजा है या राजा एक चलाने वाली उसकी प्रजा हो गई? आजकल की दुनिया में ऐसा होता है, लाल सीताशाही का जमाना कहा जाता है। जो वास्तव में अधिकारी होना चाहिए वो अधिकारी बनकर नहीं रह पाता, और जो मातहत हैं ऑफिस के क्लर्क्स या हेड क्लर्क वो अधिकारी बन जाता है। जैसे पहली अव्यक्तवाणी में बोला कि मधुवन में चलने वाले जो लिखा पड़ी है हेड ऑफिस की, उसका कारोबार तो यीशु बहन संभालती, और कहा कि ये कुमारिका भी साथ में मददगार है। माना कुमारिका को क्या स्टेज दे दी? मधुबन के हेड ऑफिस में जो लिखा पढ़ी का कार्य चलता है उसमें हेड क्लर्क की पोजीशन हुई यीशु की, और असिस्टेंट क्लर्क की पोजीशन हो गई। मददगार कौन होता है? असिस्टेंट क्लर्क। लेकिन बाद में रिजल्ट क्या निकला? हुआ क्या? क्या हुआ है? मनमोहनी दीदी को देखभाल करने वाला मुखिया निश्चित किया था, तो बाद में हो गया ऐसा कि मनमोहनी दीदी तो हो गई असिस्टेंट संचालक, सह संचालक, संचालिका का उनको उपाधि मिली बिचारों को, और कुमारिका को क्या उपाधि मिल गई? है मुख्य प्रशासिका, तो वो अधिकारी हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग पड़े, कर्मेंद्रियों का शासन हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर हो जाए। जब ऐसा होता है तो दुख की दुनिया बन जाती। उस दुख की दुनिया में कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर शासन करके हमको ही दुख देती है, आत्मा दुखी हो जाती है। तो कर्मेंद्रियों के राजा बन, कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के चलने वाले बनना है। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजायोगी कहेंगे या राजयोगी कहेंगे? सीखने तो हम आए हैं राजयोग, और बन रहे हैं प्रजायोगी, तो राजयोगी नहीं कहेंगे। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारी के वश नहीं हो सकता। क्या कहा? इस ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में भी जो मालिक होगा वो कभी भी सेवाधारी के आधीन नहीं बन सकता। अथवा जो भी मालिक बनने वाले बच्चे होंगे, जन्म जन्मांतर के राजा बच्चे होंगे, रुद्रमाला के मण के होंगे, वो आधीन नहीं हो सकते, अधिकारी की स्टेज पर रहने वाले होंगे। नंबर वार, कितना भी कोई प्रयत्न करे लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी, सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरते हो ना, कुछ भी हो जाए ये टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूं, प्रजा योगी नहीं। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो विश्व की बादशाही प्राप्त करने की सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है, अधिकार सहज प्राप्त होता है। बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म सिद्ध अधिकार स्वतः ही मिलता है, दादी की प्रॉपर्टी स्वतः मिलती है, मुश्किल नहीं होगा। सर्वशक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तर्तन सीन आत्मा हूं। किसके दिल तर्तन सीन? बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने वाली, अर्थात बाप के दिल को जीतने वाली, ये फकुर अनेक फकरों से, फिक्रों से अर्थात चिंताओं से पार कर देता है। कौन सा फकुर? कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, अर्थात बाप दादा के दिल पर चढ़ा हुआ हूं। बाप दादा ने मेरे को दिल से उतारा नहीं है, चढ़ा हुआ हूं। अगर फकुर नहीं है तो चिंता ही चिंता होगी, फिकर ही फिकर होगी। तो सदा फकुर में रहना, फकुर में रह वरदान वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बना, औरों को संपन्न बनाना है, औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग की सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का सर्टिफिकेट। औरों को क्या बनाना? दिल तख्त नशीन, खुद भी बाप के दिल पर चढ़े हुए हों, उतरे हुए महसूस न करें और दूसरों को भी बाप के दिल तख्त पर चढ़ने वाला बनाना है। बाप के दिल पर दूसरे भी चढ़ें, ऐसा हमारा पुरुषार्थ न हो कि दूसरे भी उतर जाएं और हम भी उतर जाएं। दूसरी पार्टी हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अकूट खजाने के मालिक बन गए, ऐसी खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया है धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया, धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं रह गया, क्योंकि ये सारी दुनिया धोखेबाज है। अभी किसी की समझ में आए या ना आए, लेकिन कयामत के समय में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी ऐसी नहीं होगी जो इस बात का अनुभव न करे कि इस दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब धोखेबाज, ए टू जेड। तो धोखेबाजों को याद करना होता है? नहीं, चाहे कितना भी प्यारे से प्यारा सगे से सगा संबंधी क्यों न हो, सब धोखेबाज साबित होंगे। बाप बाप नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा। जो दुनिया के संबंध है वो सब धोखेबाज साबित होंगे। और कौन सच्चा साबित होगा? एक बाप ही सच्चा सहयोगी साबित होगा और सब किनारा कर जाएंगे। अपनी अपनी पड़ेगी, दूसरों की कौन देखे। तो आज में भी कोई ऐसा नजारा हुआ है कि अब अंत में ही ऐसा नजारा होगा हैं? क्या नियम क्या है? जो आज में हुआ होगा सो ही अंत में होगा ना। तो आज का कोई ऐसा उदाहरण है कि एक बाप के सिवाय और कोई सहारा नहीं रहा, सब किनारा कर गए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहा है? हुआ? कब हुआ? जोर से नहीं बोल रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो यज्ञ के आदि में भी ऐसा नजारा सामने आया कि जब पाकिस्तान की स्थापना हुई, पाक माना पवित्र स्थान, माना स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार हुआ था जब कराची में, तो उस समय भी ऐसा हुआ था कि एक तरफ हाहाकार हो रहा था, खून की नदियां बह रही थी दुनिया के अंदर, और दूसरी तरफ स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार हो रहा था। और स्वर्ग के सैंपल में पहुंचने वाली जो आत्माएं थी उन्होंने ये पक्का अनुभव कर लिया कि हमारी कोई नहीं पूछता, अपनी अपनी सबको पड़ी हुई है। लहजा उनको मौका मिला, अब वो फट से कहां भाग के पहुंच गई। शिव की शक्तियां कहां पहुंची? कराची में पहुंच गई। उस समय उनके ऊपर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं बचा। जब शांति का पीरियड था तो तालों में बंद करके रखा, और जब अशांति का, क्रांति का पीरियड है, खून की नदियां बहने का पीरियड, अनुभव की बात है। जो आज में हुआ आज में छोटे रूप में हुआ है, और अंत में सारी दुनिया का विनाश होगा। सारी दुनिया में कयामत ही कहां, कयामत मौत ही मौत चारों ओर नजर आएगी। उस समय सबको अपनी अपनी पड़ेगी, कोई किसी का सहयोगी नहीं बनेगा, कोई किसी का मददगार नहीं बनेगा, एक परमात्मा बाप ही सबका सहयोगी नजर आएगा। तो ऐसे धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है ना कि है? सेवा से कनेक्शन दूसरी बात है। क्या सेवा करनी है वो तो दूसरी बात है, किसकी सेवा करनी है, है? सेवा किसकी करनी? अरे उसी धोखेबाज दुनिया की बताई कि सेवा करनी है वो तो हमारा फर्ज है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की सेवा करनी है, उसमें भी सबसे पहले जो लौकिक संबंधी है उनकी भी सेवा करनी है। ऐसे थोड़े ही कहा कि तोड़ निभानी नहीं है, तोड़ निभानी है, सेवा करनी है, सेवा का एम ऑब्जेक्टिव भी रखना है, लेकिन बुद्धि का पलड़ा, बुद्धि रूपी पांव किस तरफ रहे? एक बाप की तरफ रहे। मुरलियों ने भी इशारा दे दिया, स्पष्ट बोल दिया, कोई माने या न माने, फिर लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। क्यों ऐसा बोल दिया? क्यों बोला? क्योंकि सब धोखेबाज हैं। लौकिक माँ बाप के लिए भी बोल दिया कि लौकिक माँ बाप भी दुर्गति में ले जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मोह का कीड़ा लगा हुआ होता है। बाप तो मोह वाला प्यार नहीं करने वाला है, बाप का तो प्यार ही अलौकिक है। तो धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं, सेवा के अर्थ कनेक्शन होना वो दूसरी बात है, लेकिन अपने मन का लगाव नहीं चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, क्या कहा, अपने को तुच्छ आत्मा नहीं, साधारण आत्मा नहीं, लेकिन हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। क्या कहा, हीन भावना अपने अंदर नहीं आने देनी चाहिए, जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखने अर्थात फॉलो करते चलो, तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना ब्राह्मण जीवन का यही कार्य है। क्या, बाप समान बनना है और संपन्न भी बनना है। किस बात में, किस बात में, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, किससे नष्टो मोहा, देह और देह के सर्व संबंधों से नष्टो मोहा, और कौन सी स्मृति लब्धा, एक बाप दूसरा अनुभव, सबको उस स्टेज पर पहुंचना तो है ही है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी ऐसी नहीं बचेगी जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्टेज पर न पहुंचे, अर्थात गॉडफादर को 100% न पहचाने, सब उसको फॉलो करेंगे। तो समान बनना अर्थात संपन्न बनना ब्राह्मण जीवन का यही कार्य है। तीसरी पार्टी, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो, सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है, गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं, रंग रूप में भी गुलाब सबसे प्रिय है, तो आप सभी भी रूहानी गुलाब हो, आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षित करती है। कहां भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है, और आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है। आप कोई साधारण गुलाब तो हो नहीं, सारे विश्व को आपकी खुशबू आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूं। अविनाशी बगीचा कौन सा और विनाशी बगीचे कौन से हैं? कितने बगीचे हैं कुल टोटल, झाड़ में कितने बगीचे दिखाए गए, जितनी मुख्य मुख्य डालियां जितने धर्म उतने ही बगीचे सत्युग में स्थापन होते हैं। नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक 9 धर्मों के 9 नारायण हैं संभाल करने वाले, जो नंबरवार 9 धर्मों से कनेक्टेड हैं, उनकी प्रजा भी 9 धर्मों से कनेक्टेड है। तो जो जो धर्म विनाशी हैं, उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी विनाशी गार्डन के फूल हो गए। और अविनाशी गार्डन कौन कौन से हुए हैं? जिनका विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, आजीवन पवित्र रहेंगे, जीवन भर पवित्र रहेंगे। तो जीवन भर की पवित्रता का जो वायदा करते हैं और नंबरवार निभाते हैं वो आत्माएं जो सतयुग के 9 गार्डन्स हैं, उनमें फर्स्ट और सेकंड 16 कला संपूर्ण गार्डन्स की भांति बनते हैं। तो बोला ये स्मृति में सदा रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूं। कौन से बगीचे का? जो अविनाशी भारतीय बगीचा है, शुद्ध भारतीय है, पूरे भारतवासी कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ स्मृति स्वरूप में रहना अर्थात सदा खिला हुआ रहना, विस्मृत होना अर्थात मुरझाना। तो ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। कैसे खिले हुए गुलाब? जो कभी मुरझाने वाले ना हो, चेहरे पे कभी मुरझाइश ना आए, याद की, शक्तियों की, गुणों की ये खुशबू है, यही खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर के आप फूलों को तैयार किया है, कोई मनुष्य आत्मा ने आपको तैयार नहीं किया है। अव्यक्तवाणी में पहले भी बताया, कितनी भाग्यशाली आत्माएं हो जो स्वयं बाप आकर के फूलों को स्नेह का पानी दे रहे हैं, डायरेक्ट बाप आकर के, ये भी शब्द बोला, डायरेक्ट स्वयं बाप आकर के स्नेह के फूलों, वो फूलों को, बगीचे को, फूलों को स्नेह का पानी दे रहे हैं, तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हुई, तो कितने शकील दे हो। चौथी पार्टी, सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो, डबल लाइट रहती है तो सदा पूर्ति कला का अनुभव करती है, कराती है, क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे आ जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अघ नाश है तबहीं। वो तो जन्म कोटि बताई दिए, क्योंकि उन्हें बिचारों को पता नहीं कि करोड़ों जन्म होते हैं या सिर्फ 84 जन्म होते हैं, और 84 जन्मों में कितने जन्म हैं जिनमें पाप कर्म होते हैं, अघ माना पाप। तो हमें तो पता है कि 63 जन्म के पाप होते हैं, जबकि विधर्मियों का ऐसी दुनिया में आना होता है, उनके संग का रंग लगता है। तो अभी तो वो 63 जन्म समाप्त हुए, वो चक्र समाप्त हो गया, अब हम फिर से बाप के बन गए। तो 63 जन्मों के पाप जब हम बाप के सन्मुख हो गए, विमुख नहीं, बुद्धि से हमने फैसला कर लिया कि हम बाप के कदम के ऊपर कदम रख करके चलेंगे, विमुख होकर के नहीं चलेंगे, तो सन्मुख हो गए। तो जैसे 63 जन्मों के पाप हमारे खलास हो गए, सिर्फ अपने पुराने संकल्प व जो व्यर्थ संकल्पों का बोझ है वो नहीं होना चाहिए, अब अपने को हल्का समझना चाहिए। व्यर्थ संकल्प फिर से करेंगे तो संकल्पों का बीजारोपण फिर से हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः ही आ जाता है। ऐसे डबल लाइफ को ही फरिश्ता कहा जाता है, जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं रहता। फरिश्ता कभी किसी बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि फरिश्तों के पांव इस पाप की धरणी पर नहीं पड़ते, वो है बुद्ध रूपी पांव। उनका बुद्ध रूपी पांव कहां रहता है? बाप की गोद पर। जो बाप का शंकर चाप जहाज गाया हुआ है, जहाज कहो, बोट कहो, नवैया कहो, उस जीवन रूपी नवैया के ऊपर अपना सारा बोझ डाल दिया तो हल्कापन महसूस होगा, भारीपन महसूस क्यों होना चाहिए? तो कोई मन का बंधन तो नहीं है? मन का भी बंधन नहीं। जब बाप से सर्वशक्तियां मिल गईं, तो सर्वशक्तियों से निर्बंधन बनना सहज हो जाता है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के पुराने देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, पूर्ति कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। पांचवी पार्टी, सदा बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों की प्राप्ति की खुशी अनुभव करते हो? कितने खजाने मिले हुए हैं? अनगिनत खजाने मिले हैं ना? खजाना ही खुशी का आधार होता है। विनाशी खजाने से विनाशी खुशी होती है, और अविनाशी खजाना कौन सा है? ज्ञान रत्नों का दूसरा है, दिव्य गुणों का तीसरा, सब प्रकार की शक्तियों का खजाना हमको मिला हुआ है, यह अविनाशी खजाना है। तो उससे अविनाशी खुशी होती है। अविनाशी खजाने के मालिक बन गए, क्योंकि बालक सदा मालिक होते हैं। बालकपन सदा ही हल्का बनाए देता है। अगर बालकपन को छोड़ करके मालिकपन में आ जाते कि हम ही जिम्मेवार हैं अपनी जिंदगी के, तो बोझ अनुभव होता है। बच्चा सदा ही बेपरवाह फिकर बेफिकर भागता रहता है। बालकपन याद आने से डबल लाइट बन जाते हैं, और मालिकपन याद रहेगा क्योंकि बालकपन भी होना चाहिए और मालिकपन भी याद रहे होना चाहिए। कहाँ बालकपन में रहना है और कहाँ मालिकपन में रहना है, ये भी ज्ञान है, दिया हुआ है। तो मालिकपन याद आने से रूहानी नशे की अनुभूति होती है। बालक कहाँ बनना है और मालिक कहाँ बनना है? जब राय देने का टाइम आए तो मालिक बन करके राय देना है, उसमें डरना नहीं है। हमें क्या लेना देना, जो होगा तो होगा, नहीं, मालिक बन करके राय देना कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जब फैसला हो जाए तो बाप का आखिरी फैसला होने के बाद फिर अपनी बुद्धि नहीं चलानी, बालक बन जाना, जो ऑर्डर जैसे चलाए तो बालकपन। तो ऐसे बालक तो मालिकपन, इस याद के नशे की अनुभूति जिनको होती है, अगर बालक बनने में, बालक बनने के समय बालक और मालिक बनने के समय मालिक बनने की विधि आ जाए, तो सहज ही हर कदम में आगे बढ़ने का अनुभव करते रहेंगे। तो कभी उल्टा नहीं कर देना। विदाई के समय कि कुछ महावाक्य ये 7486 की अद्वैतवाणी के हैं। सभी ने जागरण किया, आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं, है? जागरण करना किसने सिखाया, है? इष्ट देवों ने जागरण करना सिखाया है। शिवरात्रि जागरण भी करते हैं ना, और देवियों का भी विशाल भगवती जागरण होता है, तो इष्ट देव तो दोनों ही हो जाते हैं, इष्ट देव या इष्ट देवी। तो आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तो भक्त कापी करें, और यहाँ अगर इष्ट देवों ने जागरण करने की शूटिंग न की हो तो वहां भी भक्त जागरण नहीं कर सकते। तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में जमा जमा की कमाई की। तो आज की रात कमाने के सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है, तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया, और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे, और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। कौन से मेले की है, नदियों के मेले की नहीं, जिसका वो संगम मनाए लेते।